नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। ऑस्ट्रेलिया में एक पब के बाहरी हिस्से में बनाए गए भोजन करने के स्थान पर एसयूवी कार के घुसने से दो बच्चों सहित भारतीय मूल के दो परिवारों के 5 सदस्यों की मौत हो गई। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने खबर दी है कि रविवार रात को फुटपाथ पर बीएमडब्ल्यू कार चढ़ गई और उसने रॉयल डेलिसफोर्ड होटल के सामने के लॉन में खाना खा रहे लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें विवेक भाटिया, उनका बेटा विहान, प्रतिभा शर्मा, उनकी बेटी अवनी और साथी जतिन चुग की मौत हो गई। खबर के मुताबिक शर्मा और उनका परिवार दूसरे पारिवारिक मित्रों भाटिया और उनके बेटे विहान के साथ छुट्टी मनाने आया था। घटना में भाटिया की 36 वर्षीय पत्नी रुचि और उनके 6 वर्षीय बेटे अबीर को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। शुरू में तो अबीर की हालत गंभीर थी और उसके दोनों पैरों की हड्डियां टूट गईं और अंदरूनी चोटें आई थीं, लेकिन अब वो स्थिर है। व्हाइट हाउस ने बुधवार को कहा कि भारत हमेशा से अमेरिका का प्रमुख रणनीतिक साझेदार रहा है और अब ये नई दिल्ली को तय करना है कि मध्य पूर्व सहित दुनिया के किसी भी कोने में किसी विशेष संकट या आकस्मिक स्थिति पर उसका क्या रुख होगा। व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में रणनीतिक संवाद के समन्वयक जॉन किर्बी ने कहा, भारत एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार है और मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए थे तब आप इस बात को अच्छे से देख और महसूस कर चुके हैं। किर्बी ने एक सवाल के जवाब में कहा, लेकिन मध्य पूर्व सहित दुनिया के किसी भी कोने में कोई संकट पैदा होता है तो उस पर अपना रुख तय करने का जिम्मा हम भारत की सरकार और उसके प्रधानमंत्री पर छोड़ेंगे। किर्बी ने कहा, भारत एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार बना हुआ है और हम हर दिन इस साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस्लामिक स्टेट समूह ने पूर्वी सीरिया में मंगलवार रात सरकार समर्थक लड़ाकों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें कम से कम 21 लड़ाके मारे गए। ये जानकारी सरकार समर्थक मीडिया और एक विपक्षी युद्ध निगरानी संस्था ने बुधवार को दी। शाम एफएम रेडियो ने बताया कि सरकार समर्थक नेशनल डिफेंस प्लेसेस के लड़ाकों पर मध्य सीरियाई रेगिस्तान में सरकार के नियंत्रण वाले होम्स और रक्का शहर के बीच स्थित अल कौम गांव में घात लगाकर हमला किया गया। वहीं युद्ध निगरानी संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी हमले के लिए आईएस को दोषी ठहराया, लेकिन मरने वालों की संख्या अधिक बताई और कहा कि इसमें 34 लड़ाके मारे गए हैं। ऐसे हमलों के बाद हताहतों की संख्या अलग अलग होना आम बात है। सीरियाई अधिकारियों ने हमले पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की और आईएस की ओर से हमले की जिम्मेदारी का तत्काल कोई दावा नहीं किया। ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष पद के लिए प्रोफेसर अनुषा शाह को चुना गया है और इसी के साथ वो 205 साल के इतिहास में संस्थान की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतवंशी बन गई हैं। आईसीई सिविल इंजीनियर के पेशेवरों का स्वतंत्र संघ और धर्मार्थ निकाय हैं, जिसके करीब 95,000 सदस्य हैं। संस्थान के 159वें अध्यक्ष के तौर पर शाह ने कार्यभार संभाला और मंगलवार की शाम को लंदन स्थित आईसीई के मुख्यालय में प्रकृति के प्रति सकारात्मक इंजीनियरिंग थीम पर अपना अध्यक्षीय भाषण दिया। शाह को जल और पर्यावरण अभियंत्रिकी में विशेषज्ञता प्राप्त है और उनके पास ब्रिटेन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 22 साल तक प्रमुख परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का डिजाइन, प्रबंधन और नेतृत्व करने का अनुभव है। उन्होंने भाषण में कहा, बतौर अध्यक्ष मेरा कार्यकाल इस पर केंद्रित होगा कि कैसे इस पेशे को प्रकृति के अनुकूल और इसके जन सकारात्मक होने की छवि लोगों के दिलों में बनाएं। 7 प्रमुख औद्योगिक देशों के समूह के शीर्ष राजनयिकों ने बुधवार को टोक्यो में गहन बैठकों के बाद इसराइल हमास युद्ध पर एक एकीकृत रुख की घोषणा करते हुए हमास की निंदा की, इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया और गाजा पट्टी में प्रभावित लोगों को सहायता में तेजी लाने के लिए मानवीय आधार पर संघर्ष रोकने का आह्वान किया। G7 में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं। इन देशों ने एक बयान में इसराइल के खिलाफ हमास के हमलों की आलोचना की तथा फलस्तीन के लोगों के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा देखभाल और आश्रय मुहैया कराने के लिए तत्काल कदम उठाने पर जोर देने की मांग की। चीन के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने बुधवार को मॉस्को में रूसी पक्ष से बातचीत की, दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की प्रशंसा की और परस्पर बढ़ते सहयोग को रेखांकित किया। चीन के दूसरे रैंक के सैन्य अधिकारी और केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष जनरल झांग यूशिया ने कहा कि रूस और चीन के संबंध अपने समय के शीर्ष स्तर पर हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश मूलभूत हितों और प्रमुख चिंताओं के मुद्दों पर हमेशा एक दूसरे का समर्थन करते हैं। बीजिंग ने पिछले साल घोषणा की थी कि रूस के साथ मित्रता को लेकर कोई सीमा नहीं है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।